हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। 7:30। दूसरी तरफ आदित्य अपने ऑफिस से निकला। उस समय उसके साथ कोई नहीं था, सिर्फ उसका ड्राइवर कार चला रहा था, आगे ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ। आदित्य पीछे बैठा हुआ था और बहुत सारी बातों के बारे में सोच रहा था। आज जो कुछ भी हुआ था और उसने विराज को छोड़ दिया था, ये सोचकर उसे थोड़ा पछतावा भी हो रहा था। लेकिन उसी वक्त उसकी आंखों के सामने विराज की माँ का चेहरा आया और उसकी आंखों में बहुत कड़वाहट नजर आने लगी। आदित्य इन सब के बारे में सोच ही रहा था कि उसका मोबाइल फ़ोन रिंग हुआ। इससे उसका ध्यान इन सारी बातों से हटा और उसने अपना मोबाइल फ़ोन उठाकर कान से लगाते हुए कहा, हेलो, कौन? दूसरी तरफ से थोड़ी परेशान सी आवाज़ आई, स्वीटी की। भैया भैया, प्लीज़ आप जल्दी से घर आ जाओ, भाभी, देखो भाभी। फ़ोन पर स्वीटी काफ़ी घबरा रही थी। स्वीटी की घबराहट वाली आवाज़ सुनकर आदित्य बहुत परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आया कि क्या हुआ था कि स्वीटी इस तरह घबराते हुए उसे फ़ोन कर रही थी। आदित्य ने स्वीटी से कहा, क्या हुआ सोना, बताओ स्वीटी, पूरी बात बताओ मुझे, सब कुछ ठीक तो है ना? कहीं उसे कुछ, तुम डॉक्टर को फ़ोन करो, मैं बस पहुँच रहा हूँ। इतना बोलते हुए उसने दो तीन बार स्वीटी से पूछा, लेकिन दूसरी तरफ से कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। आदित्य ने ड्राइवर से कहा, भैया थोड़ा जल्दी चलिए। आदित्य की बात और उसके ऑर्डर सुनकर ड्राइवर ने कार की स्पीड थोड़ी बढ़ाई, लेकिन ज़्यादा तेज़ नहीं कर पाया। कुछ ही देर बाद लगभग 10 मिनट में वे दोनों घर पहुँच गए। आदित्य ने रास्ते में ही डॉक्टर को भी कॉल कर दिया था। उसे इस बारे में पता नहीं था कि सुनैना को क्या हुआ है, और पता नहीं स्वीटी या किसी और ने डॉक्टर को फ़ोन किया भी था या नहीं। जैसे ही कार उसके घर के कंपाउंड में रुकी, वो जल्दी से कार से बाहर निकला और लगभग दौड़ते हुए घर के अंदर गया। उसने देखा कि सुनैना बड़े आराम से काउच पर बैठी हुई स्वीटी से बात कर रही थी। उन दोनों को इस तरह नॉर्मल देखकर आदित्य को राहत महसूस हुई, लेकिन उसे स्वीटी पर थोड़ा गुस्सा भी आया। उसे लगा कि स्वीटी ने ऐसा मजाक क्यों किया, इसलिए वो थोड़े गुस्से में आगे आते हुए बोला, ये सब क्या बेहुदा मजाक था स्वीटी, तुमने मुझे फ़ोन क्यों किया, और वो फ़ोन पर इतनी घबराहट वाली बातें? सुनैना तुम ठीक तो हो ना, सच में तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? इतना बोलते हुए आदित्य एकदम से उन दोनों के सामने आकर खड़ा हो गया। आदित्य की बात सुनकर स्वीटी डर गई, और डर की वजह से उसने सुनैना की बाँह पकड़ ली और हल्का सा उसके पीछे छिपने की कोशिश करने लगी। सुनैना ने एक हाथ स्वीटी के कंधे पर रखते हुए उसे अपने पीछे छुपा लिया और खुद आगे आते हुए आदित्य से बोली, अरे उस पर क्यों चिल्ला रहे हो, मैंने ही कहा था, उसे पता नहीं कहाँ चले गए थे तुम। तुम्हें पता है मैंने कितना अजीब सा सपना देखा था, जैसे कि तुम मुझे छोड़कर कहीं बहुत दूर चले गए हो, और उसके बाद पता है मैं तुम्हें ढूंढने लगी पूरे घर में, लेकिन फिर तुम कहीं भी नहीं थे, तो इसलिए मैंने स्वीटी से बोला कि वो इस तरह से कहे जिससे कि तुम जल्दी घर आ जाओ। देखो 10 मिनट के अंदर तुम घर के अंदर थे, ये ट्रिक हमेशा काम करती है। इतना बोलते हुए सुनैना हल्का सा मुस्कुराई, वो इस वक्त मस्ती के मूड में थी। इसके अलावा वो सच में आदित्य को काफ़ी मिस भी कर रही थी। उसे लगा था कि जब वो सोकर उठेगी तो वो उसके आसपास या घर में ही कहीं होगा, लेकिन वो घर में नहीं था। उसे बहुत अजीब लगा, उसे जैसे आदित्य की आदत हो गई थी इसलिए उसने ये सब किया था, लेकिन इसकी वजह से आदित्य इतनी ज़्यादा टेंशन में हो गया था कि रास्ते के 10 मिनट उसे 10 दिन के बराबर लगे, और वो पागलों की तरह दौड़ते हुए यहाँ तक आया था। ये सब जानबूझकर किया गया था, ये सुनकर उसे थोड़ा बुरा लगा और उसने कहा, सीरियसली सुनैना, तुम मेरी फीलिंग का इस तरह से मजाक उड़ा रही हो? तुम्हें नहीं पता कि मैंने इतनी देर में क्या क्या सोच लिया था? और मैंने तो डॉक्टर को भी फ़ोन, एक मिनट रुको, पहले मैं डॉक्टर को कॉल करके मना कर दूँ, फिर तुमसे डील करता हूँ। आदित्य को इस तरह नाराज़ देखकर सुनैना आगे आते हुए उसका हाथ पकड़कर बोली, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन मुझे सच में और कुछ भी नहीं सूझा, सॉरी, मैं नेक्स्ट टाइम से ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी, बट प्लीज़ तुम मुझे बताकर जाना कहीं भी, या फिर साथ लेकर जाना, या फिर जाना ही नहीं। सुनैना ने उसका हाथ पकड़कर बच्चों की तरह ज़िद करते हुए ये बात कही, और वो बहुत ही इनोसेंट नज़रों से उसकी तरफ देख रही थी। आदित्य ने उसकी सारी बातें सुनी लेकिन कुछ नहीं बोला। दूसरे हाथ से अपना मोबाइल फ़ोन निकालकर उसने डॉक्टर का नंबर डायल किया और फिर उनसे कहा, सॉरी डॉक्टर, वो अभी ठीक है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैंने बस ऐसे ही थोड़ी सी घबराहट में आपको कॉल कर दी थी, वो अभी ठीक है, आपको आने की ज़रूरत नहीं। दूसरी तरफ से डॉक्टर ने जो कुछ भी बोला होगा वो सुनाई नहीं दिया क्योंकि मोबाइल फ़ोन स्पीकर पर नहीं था। डॉक्टर से बात करके आदित्य ने कॉल डिस्कनेक्ट की और मोबाइल फ़ोन वापस अपनी जेब में रख लिया। सुनैना तब तक उसका हाथ पकड़े हुए उसके पास ही खड़ी थी और लगातार सॉरी बोल रही थी। आदित्य ने एकदम कोल्ड वॉइस में कहा, ठीक है बस करो, लेकिन प्लीज़ नेक्स्ट टाइम से ऐसा कुछ भी मत करना। वो सुनैना के पीछे खड़ी स्वीटी की तरफ देखते हुए बोला, स्वीटी तुम, सुनैना की तो तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन तुम कैसे इन सब में उसका साथ दे सकती हो, तुम्हें उसे समझाना चाहिए था ना। स्वीटी को समझाते हुए आदित्य की आवाज़ थोड़ी तेज़ हो गई। स्वीटी गिल्ट में नीचे की तरफ देख रही थी, वो आदित्य से नज़र नहीं मिला पाई और एकदम धीमी आवाज़ में बोली, आई एम सॉरी भैया, बट वो भाभी, सॉरी, मैं ऐसा नहीं करूँगी अगली बार से। स्वीटी ने इतना ही कहा था कि सुनैना उन दोनों के बीच आती हुई बोली, उसे क्यों डांट रहे हो,
उसने मेरे कहने पर किया था, मैंने बताया ना तुम्हें। सुनैना की बात पर आदित्य ने अपनी आंखें घुमाई, एक बार आंख बंद की, फिर अपने चेहरे पर हाथ रखकर आंख खोली और सुनैना की तरफ देखते हुए बोला, नहीं मैं उसे डांट नहीं रहा हूँ, मैं बस समझा रहा हूँ। और तुम्हें भी, अच्छा रहने दो, अभी सब बातें बाद में। ये बताओ तुमने डिनर किया? आदित्य ने अपनी तरफ से पूरा नॉर्मल होने की कोशिश करते हुए उससे पूछा। सुनैना ने हल्के से अपना सिर हिलाया। फिर आदित्य ने कहा, क्यों इतनी लापरवाह हो तुम सुनैना, ऐसा क्यों करती हो? मैंने कहा था ना तुम्हें टाइम से मेडिसिन लेनी है और अभी मेडिसिन का टाइम हो रहा है, तुमने अब तक डिनर भी नहीं किया। चलो अच्छा मेरे साथ। गीता दीदी डिनर रेडी है ना? आदित्य की तेज आवाज सुनकर गीता एक तरफ से वहां आई और बोली, हाँ खाना तैयार है, मैं लगा दूँ? आदित्य ने कहा, हाँ लगा दीजिए, हम भूखे हैं। गीता ने उन तीनों के लिए खाना लगा दिया और तीनों ने एक साथ बैठकर डिनर किया। लेकिन खाना खाते हुए वहां डाइनिंग टेबल पर बहुत खामोशी की। वे तीनों चुपचाप अपना खाना खा रहे थे क्योंकि उन दोनों को अच्छी खासी डांट पड़ चुकी थी और कुछ भी बोलकर वे दोनों आदित्य का गुस्सा बढ़ाना नहीं चाहती थी। डिनर के बाद आदित्य और सुनैना अपने रूम में आ गए। स्वीटी भी अपने रूम में चली गई थी। सुनैना रूम में आकर दरवाजा बंद करते हुए आदित्य की तरफ देखी और बोली, कहाँ कहाँ गए थे तुम? आदित्य ये पूछ सकती हूँ ना मैं, या फिर इतना भी हक नहीं है मुझे जानने का? सुनैना ने थोड़ा डरते हुए ये बात पूछी क्योंकि उसे लगा कि कहीं आदित्य फिर से उस पर गुस्सा ना करे। वो उसका गुस्सा नहीं झेलना चाहती थी, लेकिन साथ ही उसे ये भी जानना था कि वो कहाँ था। इस पर आदित्य थोड़ा सा उसकी तरफ आया तो सुनैना उसे अपनी तरफ आते देख पीछे की तरफ सरकने लगी और दरवाजे पर जाकर रुक गई क्योंकि दरवाजा अंदर से बंद था और वहां पीछे जाने की जगह नहीं थी। सुनैना ने वहां रुकते हुए हल्की सी अपनी नजर ऊपर उठाई और बोली, क्या कर रहे हो आदि?
इतना बोलते हुए सुनैना ने अपने निचले होठों को हल्के से काटा और दूसरी तरफ देखने लगी क्योंकि आदित्य की इतनी नज़दीकी की वजह से वो उससे नज़र नहीं मिला पा रही थी। तभी आदित्य ने बहुत प्यार से उसके एक काल पर अपना हाथ रखा और बोला, पूरा हक है तुम्हें सुनैना सब कुछ जानने का, तुम इस तरह से क्यों बोल रही हो? देखो किसी चीज़ के बारे में पूछना और मजाक में ऐसे तबीयत को लेकर झूठ बोलना या जो भी प्रैंक, प्लीज़ मुझे इन सब की आदत नहीं है, तो मेरे साथ ये सब ट्राई मत करना, मैं बहुत हाइपर हो जाता हूँ, स्पेशली तुम्हें लेकर मैं ऐसा कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाता। आदित्य ने उसे आराम से समझाते हुए ये बात कही। सुनैना बदले में कुछ नहीं बोली, उसने सिर्फ दिल से हाँ में अपना सिर हिलाया। फिर आदित्य ने थोड़ा और आगे बढ़कर उसके माथे पर चूम लिया और बोला, ऑफिस गया था मैं, इतने दिनों से ऑफिस नहीं जा पा रहा था, तुम्हारे सोने के बाद रवि का कॉल आया तो मैंने सोचा कि चला जाता हूँ कुछ देर के लिए ऑफिस, और तुम सो रही थी बस इसलिए नहीं बताया, मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। आदित्य ने ये बात बहुत ही आराम से नॉर्मल तरीके से बोली। सुनैना को समझ आ गया कि अब वो उस पर नाराज़ नहीं है और गुस्सा भी नहीं करेगा। इसके अलावा वो उसकी तरफ से भी बात समझ रही थी कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आदित्य उसकी हालत को लेकर इतना ज़्यादा केयरफुल रहता है, इसलिए उसे कैसा लगा होगा इस कन्फ्यूजन को सोचा तो उसे अपनी गलती समझ आई। उसने उसकी तरफ देखते हुए कहा, सॉरी वंस अगेन, मैं ऐसा अब नहीं करूँगी, लेकिन तुम प्लीज़ अगर कहीं भी जाना हो तो उससे पहले मुझे मैसेज कर देना, या घर में स्वीटी दीदी को या जो भी हो उसे बताकर चले जाना, ना तो मुझे भी कम टेंशन होगी तुम्हारी।